पिछले दिनों अपन ने चर्चा करी थी कि पूजा कहाँ से शुरू की सबसे पहले, और पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना है और पूजा का अर्थ क्या है, ये इन पर अपन थोड़ा सा इतने विषयों को बात करें। तो पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पूजा तो अनादिकाल से, क्योंकि रिस्पेक्ट देने की प्रक्रिया में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा से जब से जीवन है तब से हम रिस्पेक्ट देते आए हैं अपने से बड़ों को, और अपने से बड़ों का आदर करना, उनके गुणों का अनुराग करना, इसी का नाम तो पूजा। तो ये पूजा की प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि सबके अपने पूजा करने के ढंग अलग अलग, तो पूजा की पद्धति में भिन्न हो सकती है, लेकिन पूजा में किसी को ये नहीं है कि पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। पूजा तो करनी चाहिए और हमेशा से पूजा होती आ रही। सबसे पहले ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भरत चक्रवर्ती ने इस काल में उनकी सबसे प्रथम पूजा की। ये चीज़ जो है केवल ज्ञान, बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान बाद में हुआ, सबसे पहले तीर्थंकर को ही केवल ज्ञान होता, मुक्ति भी उसको ही होती है, पर एक्सेप्शन रहा बाहुबली को। तो ये अपने दिमाग में क्लियर है कि पूजा अनादिकाल से चलने वाली प्रक्रिया है, और इस काल में भगवान ऋषभ देव की सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने पूजा की थी। क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि ये पूजा की पद्धति जो है वैदिक संस्कृति से निकल के आई है, तो हम उसके उसमें जवाब दे सकें कि ये हमारे शुरू से है। रही बात आठ द्रव्यों से करने की, तो ये भी लिखा हुआ है कि आठ द्रव्यों से ही भरत चक्रवर्ती ने दिव्य आठ द्रव्यों से भगवान की पूजा की थी, त्रिलोकोन्नति ग्रंथ में। इस तरह से ये तय हो गया कि पूजा अनादिकाल से है, और पूजा की पद्धति में समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन हुए तो हो सकते हैं। आठ द्रव्य शुरू से हैं और आठ द्रव्यों का अपना कोई ना कोई अर्थ है, तो वो अपन बाद में समझेंगे। पूजा में चार बातों का ध्यान रखना है। पूजा में पूज्य कौन है जिसकी पूजा की जाए? तो पूज्य कौन होगा? पंचपरमेश्वर जो वीतरागी हैं वे हमारे पूज्य हैं, और पूजक कौन है जो कि वीतरागता का अनुरागी है, क्योंकि बिना अनुराग के पूजा नहीं होती, इसलिए पूजक को अनुरागी होना जरूरी है। पूजक वो होगा जो अनुरागी हो, और अनुरागी होने के साथ साथ इनका कहना है कि सदाचारी होना चाहिए और कुलीन, ये भी इंडिकेशन उन्होंने दिए हैं पूजा का। इस पर आज ज़्यादा अपन गौर नहीं करते हैं, इस पर भी पुराने उसमें किया गया है कि व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए, कम से कम ऐसा आचरण ना हो जिससे कि उसके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगे, और साथ में कुल जिस कुल में सदाचार की परंपरा हो उस कुल में पैदा कुली जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए है रिस्ट्रिक्शन। तो पूजक एक्चुअली पवित्र किसको होना है? पूजक को होना, तो पूजक की अपनी पहली क्वालिटी तो होना चाहिए कि वो मिनिमम उसके पास पुस्तक तो थोड़ा होना चाहिए जो कि और अपने को प्योरीफाई करेगा, तो इतना तो होना चाहिए कि सामान्य रूप से वो सदाचारी हो, कुलीन हो इस तरह का, ताकि भावात्मक विशुद्धि उसकी बन सके। वो अनुरागी भी होना चाहिए, वीतरागता जो प्रति उसका अनुराग हो, जिसके प्रति अनुराग होगा उसी की भक्ति होगी, उसी की पूजा होगी। तो अपने पूज्य के प्रति अनुराग, और पूज्य है वीतराग, इसलिए वीतरागता के प्रति अनुराग कह लीजिए। फिर पूजा, पूजा जो है दोनों प्रकार से होती है, जिसमें द्रव समर्पित किए जाते हैं भाव सहित वो द्रव पूजा कहलाती है, और जिसमें द्रव के बिना ही भाव सहित भगवान के गुणों का स्मरण किया जाता है वो भाव पूजा कहलाती है। तो इस तरह से पूजा द्रव और भाव दोनों रूप में होती है, जिसके पास जो है वो भाव सहित भगवान के लिए समर्पित करता है ये द्रव पूजा कहलाती है, और किसी के पास नहीं है तो वो फिर बिना उसके ही और अपने स्मरण कर लेता है, स्तवन कर लेता है, वो कहलाती भाव पूजा। इस तरह से पूजा तीसरा पॉइंट रहेगा, पूजा पहला पूज फिर पूजक नहीं, पहले पूज फिर पूजक फिर पूजा और फिर पूजा का फल। पूजा का फल है पूज से तादाद, उससे एक नेकता हो जाना। उन क्षणों में पूजा के क्षणों में हमारा तादाद भी जुड़ना चाहिए, या कि क्या कहें, पूजा जो है पूजा का फल है गहरी आत्मी तल्लीनता, जिसको बन गए वीतरागता के प्रति हमारी तल्लीनता हो जाए इन क्षणों में, कम से कम हम सब भूल जाएं, राग द्वेष हमारा विसर्जित हो जाए और वीतरागता में हम एकाकार हो जाए, ये हमारे पूजा का। इन चार बातों का हम पूजा में ध्यान रखेंगे। अब छोटे मोटे प्रश्न उठेंगे कि पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठ के करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में कर्म करनी चाहिए, ये चीज़ें भी जानने लायक हैं। तो पूजा जो है जहाँ तक बन सके शक्ति का जो है खड़े होते करें, क्योंकि हम दोनों का स्मरण कर रहे हैं तो खड़े होते करें। हमारी अपनी हिम्मत नहीं है या की व्यवस्था नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि खड़े होने की व्यवस्था नहीं है मंदिर में, तो हम बैठ के करें। पूजा हमेशा भगवान के सामने ही की जाती है, एक चीज़ भगवान सम्मुख दिखाई पड़ते हैं। आप यहाँ आएँ और यहाँ पूजा शुरू कर दें और भगवान का मंदिर वहाँ है, ऐसा नहीं। मंदिर के बाहर बैठ के नहीं कर सकते, गए नहीं इसलिए मंदिर के बाहर बैठ गए, कहते नहीं बाहर ही बैठेंगे तभी भगवान दिखते हैं ना कि जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। तो खड़े होकर पूजा की जाए, जहाँ भगवान दिखाई पड़ते हों वहाँ पूजा की जाए। अच्छा तो ये रहेगा कि उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके पूजा की जाए, अन्यथा फिर भगवान के मुख के भगवान के सम्मुख मुख करके भी पूजा की जाए तो कोई उसमें आपत्ति नहीं। ये कितनी चीज़ें
हैं,
प्रतिमा दिखाई पड़नी चाहिए, पूजा के समय प्रतिमा दिखाई, मेन उसमें अपना ये है कि दिखाई पड़नी
चाहिए।
कुलीन का अर्थ अपने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका कुल पवित्र हो, जहाँ रत्नत्रय की आराधना परंपरा से चलती है, जहाँ रत्नत्रय जैसा सच्चे देवगुरु शास्त्र की परंपरा जहाँ ब्लड में हो, ये कहना था कुलीन। उत्तम कुल वो उच्च गोत्र हमारे यहाँ उसको कहा गया है जिस जो कर्म में भला है, ये जो परंपरा से जिसके यहाँ अच्छे कर्म होते हैं वो कुलीन।
कास्ट
हमारे यहाँ कास्ट को इम्पोर्टेंट नहीं दी, कास्ट को नीचे कुल से मतलब, नीचे कुल से मतलब क्या हुआ, जहाँ की व्यसन चलते थे
नहीं
बोला
करता,
जहाँ मतलब
करते हैं
और
उसमें भाव हो तो वो तो फिर कुलीन नहीं हुआ।
परंपरा से जिसको आचरण पवित्र लगा
मतलब वो उनके मान्य पुरखों ने किया है और वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, क्योंकि जैन में तो हर कास्ट के आदमी मुझे सकते हैं जो हमको मानने वाला, तो मान लिया एक बच्चा है
परंपरा से उसे कुल का आचरण नहीं मिला और वो वर्तमान में अगर अपने को संभालता है तो उसे भी हमने सदाचारी शब्द में तो डाल दिया है, क्योंकि अगर परंपरा से उसको नहीं मिल पा रहा है, कभी किसी मदर में कोई से फॉल्ट हो गया है, कोई गलती हो गई है, ऐसे कई जो विनय के आवाज वगैरह ये ऐसा कुछ सुपरवाइजेशन किया लोगों ने, एक समय था विधवा विवाह हो गया तो फिर परंपरा से वो अशुद्ध माना गया ऐसे करके अवॉइड किया, तो आचार्य श्री का कहना कि नहीं ऐसा नहीं, वो अगर बाद में संभाल लेता नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्यों पनिशमेंट मिले, तो उसको पनिशमेंट नहीं देती उसको, लेकिन उसको सब चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी कि हमारे अभी तक परंपरा से सब चलता था लेकिन हम सब छोड़ दें, तो वो कहलाएगा, उसके लिए पूजा का अधिकार है वास्तव, भगवान की पूजा में वो शामिल चाहे किसी भी सच्ची। लेकिन अभी ना पूज उसका कौन है पहले तो ये, फिर पूजक कैसा, पूजा तो वितराग ही है तो फिर पूजक को वितराग का अनुराग रखना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। पहले तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, अभी एक शेड्यूल कॉस्ट है में जिसका नाम अच्छा उसने चेंज कर दिया, प्रभु जैन उसका नाम रख दिया, वो बाकायदे साल दो साल उसकी प्रक्रिया लोगों ने देखी इसकी बड़ी श्रद्धा है, तो धीरे धीरे उसको पूजा की परमिशन दे दी, अपनी अस्तित्व से पूजा करता है करता है वो।
गणेश प्रसाद जी वर्णित थे जैसे वो दूसरे
ठीक है, वैसे एक्चुअली कुल परंपरा से जो चीज़ मिलती है उसको भी हमने माना है, और अगर वो नहीं मिली और हमने अपनी योग्यता से प्राप्त की तो हमने उसको ही माना है, दोनों चीज़
मैं कि जो
ऐसी
करते हैं वो
शायद
हो सकते हैं
ठंडक तक, लेकिन उसमें भी सत्सूद हो गया जिनको हम छू लेते हैं, जिनको हम छूने में वर्ज हैं, कारू कहलाते हैं जिनका स्पर्श अस्पर्श शुद्ध होते हैं, जैसे कि गंडाल इत्यादि अस्पर्श शुद्ध या कि गंदगी साफ करने वाला तो उसको क्या कहेंगे, गंडाल इत्यादि को छूते नहीं, लेकिन बाल बनवाने वाले को, नाई को, चित्रकार को, छिपा करने वाले को, इन सबको अपन छूते, तो जिनका हम स्पर्श करते हैं उनके लिए अस्पर्श शुद्ध के लिए वर्ज है। अस्पर्श शुद्ध वो कहलाएगा जो कि निकृष्ट चीज़ों का सेवन करता है, व्यसन करता है। अगर वो मछली मारने का काम करता है तो वो मीट मार्केटिंग करता हो, वो तो पोल्ट्री फार्म खोला उसने, तो जैन भी वो तब भी वर्ग है, एक जैन भाई साहब हैं देवेंद्र जैन, पोल्ट्री फार्म है उनका, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो वो उनको वर्ग है, वो नहीं कर सकते, उसमें शामिल नहीं कर सकते। तो वर्तमान आचरण भी देखेंगे और परंपरा भी देखेंगे, तो ऐसा आप ले लें पूज्य पूजा पूजा और पूजा करता है, क्या आप लिखेंगे उत्तर और पूर्व दिशा में बैठ के करेंगे। अगर भगवान उत्तर दिशा में है तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, अगर भगवान पूर्व दिशा में हमारा मुख उत्तर दिशा में, अगर हमको इसमें प्रॉब्लम जाती है तो हम ठीक भगवान के सम्मुख मुख करके बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे भगवान वहाँ से दिख रहे हैं, फिर हम दिशा का ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। आपका आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, अगर आपको लगे कि मैं गलत दिशा में करूँगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, तो आप चॉइस करिए दिशा की, और जो उसको ऐसा कोई विकल्प नहीं है हम तो कहीं बैठ के कर लेंगे, यहाँ से भगवान दिख रहा है यहीं पर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इतना इफेक्ट नहीं होने वाला ज़्यादा दिशा का। पूजा एक पूजा प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने ही होगी, ये मैंने पहले कहा, जहाँ भगवान प्रतिष्ठित वहीं पर पूजा होगी, बाकी तो कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, रास्ते में चल रहे जा रहे हैं, काम करना है, रास्ते पर उसमें
दिशा कोई
उसमें उसमें कोई उसके लिए भी अच्छी डायरेक्शन तो दो ही है, उत्तर और पूर्व। अब पूजा का अर्थ क्या है, तो पूजा में पू धातु आती है, ये संस्कृत में धातुएं होती हैं जिनसे शब्द निर्मित होते हैं, पू धातु से पूजा शब्द बनाते हैं, तो पू धातु का अर्थ होता है पवित्र होना, तो पूजा पवित्र होने की प्रक्रिया है, दिन भर में हमारे हाथों जीवन में जो मलिनता आएगी उसको धोने के लिए हम पूजा करते हैं, शावक दिन भर मलिन होता है साफ करने के बाद, तो क्या करेगा, एक घंटे पवित्र होने की प्रक्रिया करें भगवान के सामने जाकर, एक चीज। दूसरा पू धातु फटकने के अर्थ में भी आती है, पृथककरण, भूसा और छिलका को पृथक करना, जो सारभूत है उसे बचाना, ये भी अर्थ है उसका, तो शरीर और आत्मा के बीच जो सारभूत है उसे बचा के रखना, बाकी के प्रति उन क्षणों में अनुराग छोड़ देना, शरीर को तो उठा के छोड़ा नहीं जा सकता, तो उन क्षणों में हम शरीर की सेवा नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। और दूसरा जो है स्नान करने के अर्थ में भी आती, मंजन करना या मांजना, मांजना परिमर्जन करना, तो ये भी पू धातु का अर्थ है, उन क्षणों में हम मांजते हैं अपने आत्मा को और अधिक उजला कर लेते हैं, या कि स्नान कर लेना ताकि गंदगी धुल जाए। पूजा भावात्मक होना, और अगर पूजा के साथ में भावात्मकता के साथ में हमें अर्थवत्ता भी हो, उसका अर्थ भी आता हो तो और सुंदर है। पूजा में सरसता होनी चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए, पूजा में लक्ष्य क्षमता वितरकता होनी चाहिए, कोई सांसारिक आकांक्षा हम नहीं करेंगे, वो हमें प्राप्त नयास हो जाएगी जो भी संसार की थी। भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना और संसार से हटना, तो सीधा सार्थ सीधा संसार से हटना और भगवान से जुड़ना, भक्त होना विभक्त होना मतलब टूट जाना और भक्त होना मतलब जुड़ना, तो भगवान से जुड़ना संसार से हटना। उपासना का अर्थ होता है भगवान के निकट पहुंचना, उपासना आराधना गुणों तक हमारी अप्रोच करने के लिए गुणों तक पहुंच, इसको बोलते आराधना। इस तरह से ये पूजा के बारे में इसकी जानकारी अपने को रखनी चाहिए। कुछ शब्द हैं जो कि पूजा में आते हैं उनके अर्थ भी हमें जानना चाहिए, जैसे कि अक्षत, अक्षत किसे कहेंगे, बिना टूटा हुआ चावल, अटूट चावल को अक्षत बोलते हैं, ये कुछ शब्द ऐसे हैं, अक्षत किसे कहेंगे तो अटूट चावल को कहेंगे। अर्घ का अर्थ क्या होता है, मूल्यवान, तो अनर्घ का अर्थ क्या होगा, अमूल्य, अर्घ अर्घम बोलते हैं, अर्घम निर्पाम, अर्घ का मतलब होता है मूल्यवान, कीमती, वैल्यूएबल, और अमूल्य पद की प्राप्ति है अपने को, अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ का मतलब क्या हुआ, अमूल्य। अत्र का अर्थ होता है, बल्कि अत्र अवतर अवतर, तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और अवतर मतलब माए पधारे, अत्र अवतर मतलब यहाँ पधारे। आवाहन मतलब आमंत्रण, आवाहन कहते हैं तो उसका अर्थ होता है आमंत्रण। इति आशीर्वाद, अपने हाथ से ही हम सर्व मंगल की कामना कर लेते हैं, यही आशीर्वाद। इति आशीर्वाद इसका अर्थ होता है सबके मंगल की कामना करना। आशीर्वाद मतलब सब जीवों के मंगल की कामना, जिसमें अपन भी शामिल है। इति आशीर्वाद मुझे भगवान की मेरा कल्याण हो, लेकिन इतना छोटा सा क्यों ले अपन, सबका कल्याण। इति आशीर्वाद वो एक ही बात, महाअर्घ समाप्ति का सूचक, अर्घ सामर्थ्य। तिष्ठ का अर्थ ठहरना, ठा ठा का अर्थ होता है ये बीज अक्षर है, शून्य बीज कहलाता है, शून्य बीज। इतने अर्थ लिखिएगा, या कि सर्व मित्र, ठा का अर्थ होता है सर्व मित्र या शून्य बीज है। इनके बीज अक्षरों के अर्थ नहीं निकाले जाते, एक चीज अपन ध्यान, इनको सिर्फ उच्चारित करने से, इनकी ध्वनि से और काम होता है। तो ठा ठा स्थापना, तो ठा ठा का अर्थ हो गया बीज अक्षर, शून्य अक्षर, उससे हमारे मन में स्थापना की भावना आएगी, ठहरने की भावना आएगी।
शून्य बीज का क्या,
शून्य बीज मतलब उसका कोई माने, ऐसा ऐसा बीज अक्षर जिसमें एम्प्टी मतलब जिसमें हम लीन हो जाते हैं। शून्यता जो है लीनता की प्रतीक है अगर देखा जाएगा उससे। और दूसरा अर्थ ले लिया उन्होंने सर्व मित्र, प्राणी मात्र ही से मैत्री हो गई तो कितने निश्चिंत हो जाएंगे, तो उसका प्रति। नौ देव आते हैं कई बार, नौ देव किसे कहेंगे, नौ देवता, तो नौ देवता में पंच परमेष्ठी लिखिएगा, अरहंत सिद्धाचार्य आते हैं साधु, और फिर जिन वाणी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन मंत्र, ये जिन वाणी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, ये नौ देवता। निर्वपामी इति स्वाहा ऐसा बोलते हैं, निर्वपामी इति, निर्वपामी इति मतलब भेंट करता हूँ, चढ़ाता हूँ, गच्छामि जाता हूँ, इसी तरह निर्वपामी इति भेंट करता हूँ या चढ़ाता हूँ। भाव भाव वशक आता है ना, ऑटोमेटिकली लिखा है मैंने, तो उसी भाव भाव, भाव भाव बोलते हैं मतलब हो दो बार, भाव भाव मतलब मुझे हो क्या हो, सन्निहितो सन्निधान या सन्निधिकरण, सन्निधान हो तो सन्निधान से अर्थ यहाँ पर क्या है, ये वही जिनेन्द्र भगवान है, ये वही मेरु पर्वत है, ये वही इंद्र है और मैं भी, ये वही सिंहासन है और मैं भी, मतलब सब कुछ वही है, ये वही सानिध्य है जो कि पहले कभी तीर्थंकर के उत्पन्न होने पर लोगों को मिला था, वैसा ही मुझे सानिध्य मिल रहा है और ये मेरे हमेशा हमेशा हो ये सानिध्य। और वशक जो है, वशक मतलब आकर्षण बीज कहलाता है, या शिखा बीज भी कहलाता है, या आकर्षण बीज कहलाता है। वशटकार जो है वो त्याग रूपी पूजा के अर्थ है, ऐसी पूजा जिसमें कुछ त्याग किया जाए तो उसको भी वशटकार या वशट का उपयोग करता है। और संभवशक सभी बोलते हैं संभवशक, तो ये संभवशक जो है वो जीतने का उपादान है, उपकरण है संभवशक। और स्वाहा का अर्थ है शांति बीज, स्वाहा सिर्फ बीजाक्षर है, शांति के लिए उपयोग में लिया जाता है, सब प्रकार की शांति हो। सामान्य रूप से स्वाहा में अपन सोचते हैं कि सब जल के नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा यहाँ क्या अर्थ है कि शांति की प्राप्ति को हम अग्नि में होम नहीं कर रहे, हम समर्पण कर रहे हैं गाय के लिए, ताकि हमारी शांति शांति बीज। और विसर्जन करना, वो अर्थ में भी आएगा चढ़ाना भेंट करना, इस अर्थ में भी स्वाहा आता है, पर विशेष रूप से ये बीज अक्षर है तो इसका शांति ही इसका अर्थ है सीधा। श्री जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और समोचरण का प्रतीक, श्री लिखते हैं पर श्री बना के काम शुरू करते हैं, तो श्री लक्ष्मी बीज है। कुछ लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो लोग पूजा करें, ये अच्छी चीज है। खाली में इस तरह से जो है वो लिखा जाता है, श्री यहाँ पर ओम स्वस्ते सबके, और यहाँ इस तरह जो है दर्व चढ़ाना, ये जो इस तरह से ही किया, ये अच्छी चीज है। श्री री जो है रीम, हाँ उसमें री बड़ी की मात्रा और बिंदी, रीम श्री रीम, रीम जो है वो सर्व मंत्र रूप है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, यदि सिद्धों के समूह का प्रतीक है, जितने सिद्ध हैं उनके समूह का प्रतीक है रीम। बस एक शब्द और रह गया निस्सही, ये अपन उपयोग करते हैं, तो निस्सही के तीन अर्थ हैं और एक सामान्य अर्थ तो है ही, तीन अर्थ अपन पहले लिख लें, ये आपने लिख लिया, रीम सर्वमंत्र रूप है या कि सिद्धों के समूह रूप है। निस्सही मतलब पाप का त्याग, तो निस्सही कहते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि मैं पाप का त्याग करता हूँ, अब भीतर प्रवेश करता हूँ पाप का त्याग करके, पाप का त्याग करता हूँ। या निश्चि का जो है वो साधु के रहने के स्थान को बोलते हैं निस्सही, या कि निर्वाण भूमि को भी बोलते हैं, इसलिए उसी के अर्थ में ये निस्सही कही जाती है। और सामान्य प्रचलित अर्थ है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रवेश करने से अगर बाधित होता है तो मुझे क्षमा करे या कि मुझे स्थान दे, निस्सही प्रवेश का इंगित है। निस्सही को क्या कहेंगे, प्रवेश सूचक शब्द, निस्सही मंदिर या साधुओं के स्थान या निर्वाण स्थल, इन सब में प्रवेश का सूचक है, प्रवेश की सूचना दे करके जाना चाहिए, कोई भी अन्य लोगों को परेशानी ना, निस्सही मैं प्रवेश कर रहा हूँ, मैं प्रवेश कर रहा हूँ आप मुझे स्थान दें, या कि कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करें, सारे अर्थ इसमें दर्ज हैं। अब पूछिएगा, महामह एक पूजा होती है, बड़ी पूजा को महामह पूजा बोलते हैं, और थोड़ा अगर कभी शब्द आए महामह पूजा क्या है, जिस सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो इसको महामह पूजा कहेंगे, ये बड़ी पूजा कहेंगे। ओम ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। पूजा के बारे में और भी कोई चीज पूछना हो तो
महाराज जी, जो द्रव चढ़ाते हैं स्वाह बोलते हैं, मैंने देखा बहुत लोग बोलते ही नहीं, पर उसमें क्या प्रोसीजर है, चीज कितने होंगे इसे चढ़ाने में,
इसमें तो कहीं कोई इस तरह की चीज नहीं दी है, एक्चुअली क्षेपण तो जो है इस तरह से और उतनी मात्रा में हो सबके थोड़ा थोड़ा सा चलाते हैं ऐसे करके, डरेता भी नहीं था ऐसे भर करके चढ़ाने का है, जहाँ कुछ चढ़ाना कुछ अक्षर चढ़ाना नैवेद्य तो नैवेद्य, हर चीज़ जो है समर्पित करना है, दोनों हाथ से ऐसे करके चढ़ाया जाए तो वो तो भर करके पूरा ऐसे खोबा करके आपने चढ़ा दी तो थोड़े ऑलरेडी जब इतना चढ़ाएंगे ऐसे करके नैवेद्य इतना सारा नैवेद्य है इतनी चिटक एक साथ भर के चढ़ा दी तो उसमें भी ये प्रक्रिया बनी कमला कमल की आकृति और फिर इसी तरह मुकुलित करके प्रणाम कर और उसी की अंजलि कहते हैं पुष्पाम जलि पुष्प की अंजलि छेपित कर रहा हूँ मैं, अंजलि भर करके पुष्प छेपित कर रहा हूँ, तो उसी तरह से फिर जैसा बने वैसा कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रतिक्रिया वो नहीं है। ये जो उंगली मानी गई है विशेष रूप से ये यश और वैभव के प्रतीक है, इसलिए अक्सर जो है अपन लगाते हैं टीका लगाएंगे तो उसी से लगाएंगे, अगर कोई भी किसी को द्रव्य देंगे तो ये इसको ज़्यादा काम में नहीं लेंगे, ये दूसरे को टॉर्चर करने वाली उंगली मानी जाती थी डिमॉन्स्ट्रेशन था उसके लिए, तो उसको अलग कर देते हैं और इस पर ऐसे करके समर्पित करें, तो इन तीन उंगलियों का उपयोग कर लेते हैं। पूजा में नहीं बोलते क्योंकि हम चढ़ाएंगे मंत्र पढ़ के द्रव्य चढ़ाना वो कहलाएगी द्रव पूजा, और बिना मंत्र पढ़े और सिर्फ भगवान के गुणों का स्मरण करना वो कहलाएगी भाव पूजा, जिसमें द्रव्य भी नहीं चढ़ा रहे तो मंत्र भी नहीं बोल रहे, मंत्र तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चढ़ा रहे हैं कुछ है ही नहीं चढ़ा रहे हैं,
तो
क्यों
बोलते
नहीं बोलना, पर एक्चुअली भाव पूजा श्रावक के लिए है ही नहीं, भाव पूजा साधन के लिए, जिसके पास द्रव्य नहीं है वो भाव पूजा करे, जिसके पास द्रव्य है वो भाव पूजा ना करे। तो उसमें भी द्रव चढ़ाना चाहिए और रख लेना चाहिए उसको डिग्री में भर करके, जब मंदिर जाओ तो डाल आएंगे वहाँ पर। हमने तो रोज का समर्पित तो की है द्रव्य, भले ही किसी तरह से भी की। एक एक कोई भी द्रव्य जो है, कुछ लोग गुल्लक में पैसे डाल देते हैं या इस तरह का, मतलब हमारा त्याग का भाव उस समय होना चाहिए। सीधा पूजा जो है वो पवित्रताओं की प्राप्ति के लिए अपवित्रताओं का त्याग है। अपवित्रता छोड़ रहा हूँ, ये परिग्रह मुझे अपवित्र करता है तो इसको छोड़ने की इच्छा कर रहा हूँ उन क्षणों में, ये उसका प्रतीक है। नैमित्तिक पूजा होती है जो किसी पर्व के निमित्त से की जाती है, उन्हें नैमित्तिक पूजा कहते हैं। दैनिक पूजा अलग होती है और नैमित्तिक पूजा अलग होती है। तो नैमित्तिक पूजा में अपन पर्व के दिनों में की जाने वाली पूजा है। द्रव्य हम लोगों के
यहाँ फूल क्यों नहीं चढ़ाते?
अपन ने ऐसे द्रव्य चुने हैं जिससे कि हिंसा कम से कम, तो हमने पुष्पों को चावल को रंग के उसको पुष्प मान लिया, हमने चिटक में नैवेद्य की कल्पना कर ली, सब हमने ये स्थापना निक्षेप है, जैसे भगवान को मूर्ति में हमने स्थापित किया है, ऐसे द्रव्य में भी हमने सब चीज़ों को स्थापित किया है ताकि कम से कम हिंसा हो, बहुत समय तक पड़ी भी रहे तो उसमें जीवराशि पैदा हो। फूल चढ़ा देंगे तो वैसे ही उसमें जीवराशि है और उसके आश्रय जीवराशि पैदा होती है। फल चढ़ा देंगे, देखते थे हम वहाँ पर पूरे पूरे उसमें फल की गंध भर जाती, और उसी पे चावल चढ़ा है तो वो जहाँ चावल किसी ने लाई थी चढ़ा दी केले के ऊपर, वो सब रहा है वहीं पर रखा, पूरी गंध भर जाती है उसमें फल फूल की खाने पीने की सामग्री। इस वजह से फिर धीरे धीरे सामग्री का निषेध हुआ कि ऐसी द्रव्य खोज। एक्चुअली नैमित्तिक पूजा में रक्षण पूजा सब उसी के असल में पहले पूजा जो है ना दिव्य द्रव्य के द्वारा होती थी। जो पीले चावल बनाए जाते थे वो सोने के, और जो सफ़ेद चावल अक्षत वो चांदी के होते थे, तब सोने चांदी की कहाँ से लाए, मोती चढ़ाए जाते थे कुछ दिए गए पर सफ़ेद पूजा, तो फिर वो दिव्य थे, वो सारी चीज़ें दिव्य हैं। अब रत्न दीप चढ़ा दिया दीपम की जगह पर, रत्नों का दीपक होता था, अब इस दीप को जला रही नहीं है, एक इंद्रिय है वो तो से तो खुद लाइट हो रही है, तो भगवान के हमें चढ़ा क्या है?
25-30 साल पहले तो
आज भी श्वेताम्बरों परंपरा है, दस लक्षण के आखिरी दिन कोई ना कोई सोने चांदी की कोई ना कोई चीज भगवान के अभी भी गजमुक्ता खुश। वो मतलब हमारा ये रहा कि उत्तम द्रव्य अर्पित करना जिसका उपयोग हम नहीं करते, ऐसी चीज चढ़ाई अमूल्य जो सामान्य व्यक्ति के अप्रोच के बाहर है वो भगवान को पहुंचा, ऐसा हमारा हो रहा। अच्छी से अच्छी द्रव्य चढ़ा, क्योंकि जब अच्छा पाना चाह रहे हैं तो अक्षत की अपनी विशेषता है कि अक्षत जो है उगता नहीं है, जो अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अखंड अखंड चीज चढ़ाई है तो अखंड होने के लिए चढ़ाई, और चावल जो है चावल को अगर उंगली में ऐसे दबाएं उसको तो टूटता नहीं चाहिए, पत्ती उंगली में तकलीफ होने लगेगी ऐसे दोनों साइड इतना वो रहता है, इसको हमने अक्षत की उपमा दी थी। ये जब अक्षत कई कठोर है कि उसको बोएंगे तो उगेगा नहीं, वो मिट करके पौधा नहीं उगेगा, धान में से उगेगा, पर वो अक्षत जो है हमेशा अक्षत ही रहेगा, वो नष्ट होकर के उसमें से कोई नया पौधा नहीं, तो जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमने अक्षत रखा, ऐसा अक्षत पद प्राप्त करने के। और उसके ऊपर जो कवर था वो हमारे कर्मों का कवच था, तो कर्मों का कवच जब हटेगा तब वैसा अक्षत प्राप्त होगा, ये उसका प्रतीक है। और किसी धान्य के साथ ऐसा नहीं है, इसके ऊपर से कवच हट जाता है, इसके ऊपर लालिमा रह जाती तो वो भी हट जाती, तो इसी तरह हमने धान के ऊपर के छिलके को माना है चार घातीय कर्मों का प्रतीक, और इसकी लालिमा को माना है चार अघातीय कर्मों का प्रतीक। ऐसे जब आठ कर्म नष्ट हो जाते तब उज्ज्वल जैसे चावल प्राप्त होता है, ऐसे ही भगवान के चावल चला के मैं भी अपने उज्ज्वल पद की प्राप्ति का भान कर उसकी कोशिश कर रहा हूँ, ये उसका चावल। इसलिए अपने चावल को प्रायोरिटी दी है, जैनों में ही चावल चढ़ता रहा हो, कहीं पर से कोई चावल चढ़ाता हो ऐसा कहीं नहीं है, और छुट्टी जो व्यक्ति का साथ चलता है कर सकते हैं। आरती के संबंध में कुछ है, दर्शन के बारे में तो मैंने कह दिया, मंदिर में दर्शन किस तरह से कर लेने का। आरती तो जैसे अपन करते हैं दिन में करें तो बहुत अच्छा, रात्रि में आरती करना होती है तो थोड़ा सावधानी रखें कि 5 मिनट में सारी प्रक्रिया खत्म कर लें ताकि जीव राशि ज़्यादा उत्पन्न ना हो। और
जलाकर
करना चाहिए परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही, आज की लाइफ तो है नहीं और बनाई है, जिसने बनाई होगी तो बुद्धिमान नहीं रहा होगा। एक्चुअली वो ज्योति हमारे केवल ज्ञान की प्रतीक है, और जब तक ज्योति नहीं जलती है तब तक मन में वैसा उल्लास नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखिए, एक बार आपसे कभी कहूँगा इसके बारे में कि रिचुअल्स कैसे डेवलप हुए, क्रियामयन कब होती कोई चीज़, जबकि उसके पीछे जो प्राप्त होने वाला है वो हम खो देते हैं, तब वो क्रिया सिर्फ आडंबर या क्रियाकांड है। और अगर हम उससे कुछ गेन करते हैं तो फिर वो क्रियाकांड कैसे कहलाता है। हमने बेटे के बरसी होने पर और बाजी बजवाए थे अपने घर में और बड़ा उत्सव मनाया था, तो अब इसको क्या कहेंगे, क्रियाकांड कहेंगे। अब हो गया बेटा 1 साल का हो गया, अब क्या बजवाना, नहीं हर साल मनाएंगे क्योंकि हमारे उत्सव का दिन है। तो ये इसको हम क्या, उससे हम गेन कर रहे हैं, हम इसको क्रियाकांड नहीं मानते। हम ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि रोज दोहराते हैं। अभी उधर अपोलो पर कोई पहुंच जाए, एक समय था आप पहुंचे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब पहुंचाता था पटाखे फूटे थे। अभी कोई टीम जीता है तो पता भी भूलते हैं क्या है। ये हमारा उत्सव का प्रतीक। इसी तरह मैं भगवान की पूजा करने गया हूँ तो मैं, मेरा मन बहुत आह्लादित है और मैं दीप भी जलाऊंगा, धूप भी जलाऊंगा, मेरे द्वारा थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी, लेकिन मैं उस थोड़ी सी हिंसा के पीछे इतना सारा पुण्य, भावों की विशुद्धि कैसे छोड़ सकता हूँ, उसके बिना श्रावक का बनता नहीं। इसलिए एक पॉइंट लिखा है कि पूजा नीरस नहीं होनी चाहिए, पूजा में सरसता होनी चाहिए। एकदम ऐसे गुम सुम से चुपचाप बैठ गए चले गए, द्रव्य भी नहीं हमारे पास, ऐसे बिना नहाए धो चले गए तो कैसे वैसे भाव नहीं लगेंगे। और बड़े उल्लसित होकर के नहा धोकर के और थाली वाली सजा करके और नस्ते हुए चले जा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, लगेगा दूसरे को क्रियाकांड जैसा, लेकिन उसके आनंद की देखिएगा कि बार नहीं है। रामकृष्ण के साथ यही हुआ था, उनको हटा दिया था पूजा करने से, एक मंदिर में उनको पुजारी की तरह रखा गया, तो उनने पहले दिन जो है बड़े नहा धोकर के और हंसते खेलते और पूजा की थाली दे प्रसाद प्रसाद भगवान के सामने आके खड़े हो गए, और बस 2-3 दिन तो उनकी पूजा चली, फिर उनको हटाने का प्रावधान आ गया, हटाओ उनको, चले गलती क्या है, गलती देख लो आप खुद जाके देख लो, ये भगवान को बाद में चढ़ाता है, पहले खुद खाता है, फूल पहले चुनता है फिर भगवान को चढ़ाता है, ये कैसा आदमी है। तुमने कहा कि ये तुमने ये कोई पूजा का ढंग है, रामकृष्ण का जवाब था कि पूजा का कोई ढंग होता है, ये तुमने आज मुझे याद दिलाया। पूजा तो बेढंग की होती है, पूजा तो आनंद की प्रतीक है, उसमें कौन सा ढंग, और अगर तुम्हें ढंग से पूजा करवानी हो तो किराए का आदमी बुलवा लो, वो ढंग से पूजा कर सकता बिल्कुल मैकेनाइज जैसी आप कह रहे हो वैसी, मेरे बस का नहीं। उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों करा, उन्होंने कहा कि जब मुझे मेरी माँ खिलाया करती थी कोई सामान तो पहले चख लेती थी, फिर खिलाती थी पता नहीं मीठा है कि नहीं है कैसा है, बेटे को बड़वा तो नहीं लगे, फिर इतने बड़े भगवान तो मैं प्रसाद जरा देखती हूँ कि ठीक है कि नहीं, तब जाऊँगा उसमें गंदे ही ना हो भगवान के चढ़ा, मैं पहले सोचता हूँ फिर जाता हूँ। अब बताइए ये भावना। एक और उदाहरण सुनाऊंगी, ये तो सामान्य हो गया फूल और प्रसाद का। एक पंडित जी, हमने कभी सुना है दामोदर दास जी पंडित जी हुए सागर में स्पाइन हो गया, मैं उनके सामने पूजा शुरू कर दी थी मैंने अपने घर में, तो वो कभी किसी से मैंने उनको नहीं देखा कि उनने मंदिर की द्रव्य ली हो, अपने घर से पूजा की द्रव्य लेके आते थे मंदिर के पानी से धोते थे, तो धो करके फिर पूजा अपने हाथ से धोते, कभी किसी से नहीं धुलवाई। एक दिन अस्वस्थ होंगे तो मेरे से उन्होंने कहा कि बेटे पूजा ये धो दो, मैंने कहा सौभाग्य की द्रव धो रहा हूँ, उनकी किसी से नहीं धुलवाते। मैंने धोकर के उसमें देखा कि बादाम नहीं थी या कि फल की जगह पर कोई भी चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, बादाम या सुपारी या ऐसा कुछ, तो धीरे से कहा पंडित जी इसमें फल नहीं है, कोई ये फल देखो वो ये है, कम भी दिखता था, उनसे क्या कहें अपन बहस करें। फिर मैंने धीरे से कहा कह नहीं पंडित जी भूल गया, कहने है तो कहे वो किसमें से नहीं है किसमें से, वो तो थी कहे पंडित जी किसमें से, कहने भाई भैया हमारा फल है, वो फल की जगह किसमिस चढ़ाते थे। और हमने उनसे फिर पूछा, हमने कहा आप किसमिस क्यों चढ़ाते, तो उनका उनका जवाब देखिएगा, तुमने कहा कि मैं तो बाहर भीतर ऐसे किसमिस की तरह मुलायम होना चाहता हूँ, यही फल चाहता हूँ इस पूजा का, इसलिए मैं किसमिस चढ़ाता। अब कितनी एकाग्रता हो गई उन पूजा के द्रव्यों के साथ, व्यक्ति कितना भावात्मक जुड़ गया, वो किसमिस चढ़ा के भावना कर रहा है कि मैं बाहर भीतर ऐसा ही सब में निर्बल न हो, ऐसा ही बनाए न हो, कठोर ना हो कौन किसी का। तो पूजा की तरफ अपन ने चुने हैं, उनके पीछे भावात्मकता मुख्य है, उसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज जो है पूजा की तरफ को लेकर झगड़ा हो कि ये जलाएंगे, ये जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, इतने जलाएंगे। अरे भाई मन लगता है तो थोड़ी देर के लिए दीपक जला लिया तो क्या हुआ, हमने मनो मनो तनों तनों लकड़ी जलाई, गैस जलाई, उसमें कितनी हिंसा करी। और यहाँ जरा से हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं तो ऐसा नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ लेकिन निषेध भी नहीं, दोनों चीज हमें हिंसा अहिंसा का ध्यान दी। बस उनकी अपने तपस्या की वजह से और भगवान से पहले उनको मोक्ष हो गया इसलिए हमने उनकी मूर्ति बनाई, पर है नहीं रहता। 24 विभाग के अलावा किसी की मूर्ति नहीं बनाई जाती, चक्रवर्ती की बनती है, बाहुबली की बनती है, तो ऐसे हमने बनाई है। पंचपरमेष्ठी की सबकी बनती है लेकिन स्थापना जो होती है पंच कल्याणक पूर्वक वो तो भगवान की, उनके कल्याण की नहीं, उनकी प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे नहीं होते, उनके जन कल्याण गर्भ कल्याण कुछ नहीं होते, केवल ज्ञान कल्याण होगा, सीधा केवल ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। उनके दो कल्याण में स्थापना हो जाती है, उनके 5 दिन का नहीं होता वहाँ को भी, लेकिन जब स्थापना करी जाएगी तब किसी न किसी भगवान के सानिध्य में करी जाएगी। आदिनाथ भगवान, उसमें भी किसी न किसी भगवान नहीं, अगर महावीर भगवान की स्थापना करनी है तो आदिनाथ की तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्योंकि शुरुआत कोई ना समझे कि महावीर स्वामी से हुई, शुरुआत आदिनाथ से हुई, इसलिए पहले स्थापना में मूल नायक आदिनाथ, फिर उसके बाद 24 तीर्थंकर करने से कोई बना दो, ये है प्रतिष्ठा। कोई बात नहीं, आदिनाथ जब पंचकरण हुआ होगा वहाँ से वो खरीद के लाया होगा मूर्ति अपने लिए, वहाँ तो आदिनाथ को मूल बनाया होगा, फिर 100 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई होगी, मूल आदिनाथ होंगे, अब वो आदिनाथ मूल तो उसी मंदिर में रह गए तो अपनी अपनी प्रतिमा उठा के अपने घर ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो 25वें तीर्थंकर नहीं, ये आगामी तीर्थंकर होंगे, 25 नहीं होंगे, 25 तो वही थे जो चीज जो जैसा बनेगा उसको वैसा ना मानना पड़ेगा। क्या रावण के तीर्थंकर रावण गलत नहीं थे, क्योंकि प्रति नारायण का पद उनने गाया था, अपने यहाँ तो शला का पुरुष है, नारायण जिसते हैं उतने प्रति नारायण भी
तीन
रावण की कमी अपनी जगह है, लेकिन रावण की योग्यता भी अपनी जगह है। एक 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 पति लता का व्रत नहीं लिया था उसने, 16,000 रानियां थी उसकी, इसके बावजूद भी ये व्रत ले लिया था मुनि महाराज जी से कि जब तक कोई हमारे साथ नहीं चाहेगा तब तक मैं उसे स्पर्श भी नहीं करूँगा, विवाह के लिए मंजूर नहीं होगा तो स्पर्श, ये उसका व्रत था रावण का, इस व्रत ने उसे बचा दिया। नहीं मैंने उसके प्रति मन ही उसका खराब नहीं हुआ जब तक कि वो परमिशन नहीं दे, इतना तो कट्टर था। और उसमें देखा हुआ कि जब विद्या सिद्ध करने बैठता था तो कोई भी आ जाए, रामचंद्र जी को सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उस विद्या को सिद्ध करने में जिंदगी लग जाएगी, जिसको 10 मिनट के अंदर रावण सिद्ध कर, अच्छा संकल्प किया, ये देखा हुआ। कल रावण बहुत बुद्धिमान आदमी था, बस वो तो थोड़ा अहंकार और उसकी वजह से जो नरक गया, वो तो आकर के वो तीर्थंकर होगा और सीता जी उसकी गणधर होंगी, आप आश्चर्य करेंगे, जिनसे कि कल झगड़ा हो रहा था उसकी गणधर गए, उसको उपदेश देने के 30 मिनट में भक्ते जा रहे हैं, 16वें स्वर्ग में बैठी हैं और उसको संबोधन करने के, तो ये तो जीव है कि थोड़ी गलती कर लेता है तो उसका पनिशमेंट मिलता है, कुछ अच्छा करता है तो इम्प्रूव करते हैं,
इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा।
वो तो हमेशा से तभी तो दो पैदा हुए, नहीं तो नहीं होगा तो हमने लड़ाई नहीं की थी, आपने तो उपद्रव खड़ा किया नौ भगवान के टाइम से, आप ही तो डिवाइड हो गए, वैदिक संस्कृति आपने नहीं बनाई की तो ओरिजिनल समाज संस्कृति, अब किससे कहने जाए कि हम ओरिजिनल, वो कहते हम ओरिजिनल, हम कहते हैं आप सही, ओरिजिनल तो तीर्थंकर भगवान थे, वहीं से 363 मत मतांतर उत्पन्न हुए, मारीची का जीव सबसे पहला फाउंडर, मारीची का जीव जो भगवान महावीर बने वो उस समय मारीची सबसे पहले उनने भगवान का अपोज किया, पहला मत तो वहीं से शुरू हुआ, फिर ये इतने मतलब
हम लोग पीस की बात करते हैं, हम लोग पीस की वन पीस की बात करते हैं
तो करते हैं अहिंसा के माध्यम से करते हैं,
और जो बात मान लिया ऐसे इश्यूज आते हैं तो उस पर
तो क्या करें हम, मतलब अपनी ये वास्तविक मैंने सत्य भी हम ना करें, क्या चाहते हैं हम? कर्ण को कान से पैदा होने वाला मानते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं, और हम झगड़ा नहीं करना चाहते।
ठीक नहीं, हम चाहे जो माने लेकिन मतलब
लेकिन वे जो मानते हैं हम उसका समर्थन क्यों करें? हम ठीक है, हम चाहे जो मानेंगे लेकिन हम आपका समर्थन और विरोध दोनों नहीं करें। विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी मान्यता ये है, आपकी ये है, बस उनको हमारी मान्यता से चिड़ नहीं होनी चाहिए। जब हमें उनकी मान्यता से चिड़ नहीं होती, आपकी भी हमसे चिड़ होनी चाहिए। हम अगर रावण को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन हम रावण की कमजोरियों को प्रायोरिटी थोड़ी दे रहे हैं। ये तो देखिए
ऐसा है ना,
ये तो प्रश्न कहीं और चला गया। कमजोरी की वजह से जब बहुत अधिक व्यापकता हो जाती है और अपनी बुनियाद को हम छोड़ देते हैं तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। और हमारे साथ यही है, हमने व्यापक होने के लालच में होना चाहिए, व्यापक होने के लालच में अपनी बुनियाद छोड़ दी और सबके पैर छूना शुरू कर दिया। आप
ऐसा
कर रहे हैं कभी भी, जबकि वैदिक संस्कृति में कहा गया, खुद शंकराचार्य प्रथम शंकराचार्य ने ये कहा था कि जैन मंदिर में प्रवेश मत करना, हाथी सामने से आ रहा हो तो उसको नीचे कुचल के मार जाना, मगर मंदिर में रक्षा की प्रवेश, जैन मंदिर में प्रवेश मत करना। 6 महीने तक जैन ग्रंथ चलाए हमने, खुद तक नहीं की पहले शंकराचार्य, और आज अगर शंकराचार्य आ जाए तो हमारी हम सवारी लेने उनके लिए चले जाए। हम कभी नहीं कहते, हमने कभी किसी से नहीं कहा। आप होली का चंदा मांगने आ गए, हमने दिया। आप विष्णु का गणेश जी का चंदा मांगने आ गए, हमने दिया। हमने महावीर जयंती का चंदा नहीं मांगा, जबकि आप रावण जलाएंगे, हिंसा करेंगे, रावण जलाएंगे, संगी पंचेंद्री को आप मारेंगे, पूरा मारने का पाप लगेगा। जितने शामिल हुए थे सब ने सामूहिक हिंसा की है, और सबको इकट्ठा पाप मिलेगा कि पूरी बस में बैठे मांगो तो गई जाए पूरी। ये हम जान रहे हैं इस चीज़ को, फिर भी अफोर्स तो नहीं करना, लेकिन हम फैक्ट तो कहेंगे। इसी कमजोरी की वजह से हम लोग जो हम उनके हर त्यौहार में शामिल होते हैं, बेमान किसी त्यौहार में शामिल होंगे। देख लो
जी, आप जबरदस्ती किसी को
शामिल
कर रहे
हैं। नहीं, आप व्यापकता की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा कि जैन जितने व्यापक हैं मेरे ख्याल से और कोई मेजॉरिटी कोई भी कहा, जितना हमने सबको स्वीकार किया, कभी किसी का बोझ नहीं किया। हम हमेशा दबते हैं, उस दबने का परिणाम कि हमारी उसको कमजोरी माना गया। मौलिकता भूल गए हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे कहते हैं कि ठीक है सब, हमने व्यापकता की चर्चा करी, लेकिन कभी हमने किसी भी वैदिक संस्कृति वाले को बैठ के और जैन धर्म की अच्छाइयों के बारे में कभी चर्चा करके नहीं देखी। हमने जरूर वेदों की बात कही होगी, लेकिन उसने कभी हमारे समय सार की कोई गाथा बोली हो तो बोलो। हमने गीता के श्लोक जरूर बोले हैं, लेकिन उसने हमारे कभी प्रवचन सार को कोड नहीं किया। आप व्यापकता की बात कर रहे
हैं,
अब आप कायरता को जो है हिंसा की उपाधि दे रहे हैं तो दें।
नहीं नहीं, टू डिफरेंट, ये तो बात ठीक है, ये नॉन वायलेंस होनी चाहिए, कावर्डिस नहीं,
लेकिन हुई है, देख रहे हैं हम कायर हुए हैं, हिंसा कहाँ हुए, हम झुक गए हर जगह, गलत में भी हमें झुकना पड़ा, हम अपोज नहीं कर पाए कि हम नहीं देंगे चंदा, हम ब्राह्मण बनाएंगे हम नहीं देते चंदा। आप कहाँ माना कर पाते बताइए।
नहीं, हम लोग तो इसलिए नहीं मांगते, अगर मान लिया हम लोग मांग जरूरत नहीं।
इससे मालूम पड़ रहा है कि अब क्या कहूँ, नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, छोड़िए,
नहीं कहिए,
नहीं हम कहाँ ले जाएंगे अपने को इस तरह करके। हम कभी अपोज नहीं करते, लेकिन हम गलत का समर्थन भी नहीं करते, हम लॉजिक नहीं देंगे, लॉजिक हम दे करके उसका सपोर्ट नहीं करें। तो अपने को कभी नीचा नहीं दिखना है, नीचा साबित नहीं करें, जहाँ भी बैठेंगे अपने को नीचा ही बना, और है भी आत्मा में तो हम नीचे हैं। हमने प्राणी मात्र के कल्याण की बात करी, किसी ने करी? हमने जैना नाम नहीं लिखा, जीवा नाम लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं लिखा। हमारी परिभाषाएं बहुत व्यापक रही शुरू से, हमने मिथ्यात्व को मिथ्यात्व कहा है लेकिन किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने कुदेव को कुदेव कहा है लेकिन आपके किसी भगवान को हमने मिथ्या देव नहीं कहा। हमने कहा अगर ऐसा ऐसा है तो उसको देव नहीं मानेंगे, देवत्व होना चाहिए। ये क्या है कि नरमुंड हाथ में लिए हुए हैं और माला पहने हुए हैं फिर भी आप देव मानते चले जाए, ये देव का लक्षण हो सकता है? हमने इतना कहा तो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने तो एग्जैक्ट कहा था कि भाई ऐसा है, आप इसको देव मानेंगे क्या? देवत्व तो होना चाहिए देव में, ये देवता का देव देवत्व का प्रतीक है। और आप उसको माना देख रहे हैं, आप अपने घर के बाजू में रखी हुई है तो आप रोज निकलते हैं तो हॉर्न बजा देते हैं, गाड़ी का भी गड़बड़ ना हो जाए, तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी कायरता है। मैं तो इसको कायरता कहूँगा, हिंसक नहीं है, आप पैर कटलाई मोड़ नहीं लेना चाह रहे हैं, ये ठीक है।
बहुत से मत जैन लिखते नहीं अपना नाम कर दे,